الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم لوگ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ لاسٹ 182 آیت میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ وراثت کا اور وہ مسائل کچھ چل رہے تھے، اور یہ سارے جتنے بھی ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا، یہ اب سورت کے اینڈ تک ابواب البر کے ڈفرینٹ احکامات چلیں گے۔ آپ نے دیکھا سب سے پہلے وہ قصاص کا مسئلہ آیا، وراثت کا آیا، اب یہاں رمضان کا مسئلہ شروع ہو گیا، اس کے بعد اور مزید حج وغیرہ کے، اور وہ اس طرح سے ایک کے بعد ایک سارے ڈفرینٹ ابواب البر کی کیٹیگری میں سے ڈفرینٹ جو باب ہیں وہ ڈسکس ہوں گے انشاءاللہ۔ لاسٹ واز تھرڈ حکم جو تھا وہ وصیت کا تھا، اور اب یہ فورتھ حکم آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، شاید اس لیے کہ شاید تو نہیں، لعلکم تتقون، یعنی کہ تم لوگ تقوی دار بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس لیے ایک تو چیز دیکھیں کہ ایک جو ریزننگ اللہ نے دی یہاں پہ کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور اس کا ریزن اللہ نے کیا دیا کہ ماں، اور اسی طرح پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، کہ تم تقوی اختیار کرو یا تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ واٹ ڈو یو تھنک کہ اللہ نے ایسا کیوں فرمایا، روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے؟
تو روزے میں کی خاصیت ہے نا کہ تقوی بلڈ کرتا ہے، خاص
اس کی ایک لاجک
اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ اس کا ہوا ہے،
ڈائریکٹ وہ ہے، بالکل ہے
لنک،
ایک لاجک ایسے ہے، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو ہاؤ فار اٹ اپلائی،
روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا،
روزہ صرف اللہ، بالکل ہے، ایبسولوٹلی، اپنا جان مال اور وہ بندہ وقت سمجھیں گے سارا ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں رمضان میں تراویح،
دوسری چیزوں میں آپ چیٹ بھی کر لیں، مطلب آپ چیٹ کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، روزہ ایسا ہے کہ لوگوں کو لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ روزہ رہے ہیں، بٹ اپنا اندر کونے میں جا کے آپ کھا لیں، لیکن تو روزہ یہی ہے،
روزہ یہی ہے، ایمان یہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے،
بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ کبھی کسی ہارسز کا یہ اسٹیبل جو ہوتا ہے، یہاں کبھی ٹیکسز وغیرہ میں آپ کا جانا ہوا؟
نہیں، میرا ہوا تو نہیں ہے، لیکن میں دیکھا ہے، مطلب ریگولر نہیں لیکن دیکھا ہے۔
ادھر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، یا اگر کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں بھی ہو تو آپ دیکھیں گے یا پڑھیں گے، یا ایون ٹی وی میں یا کہیں ڈاکیومنٹریز میں دیکھیں گے، ایک جنگلی گھوڑا ہوتا ہے، سمجھے، یعنی کہ انٹرینڈ گھوڑا ہوتا ہے، اٹ ڈزنٹ نو واٹ ٹو ڈو، ہاؤ ٹو ایکٹ اور ہاؤ ٹو ری ایکٹ۔ اسے ایک بندہ، اس کا مالک کہہ لے، جب لیتا ہے تو اس سے کچھ ٹرین کرنے کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، اور وہ کیا پیٹرن ہوتا ہے، وہ ایک کام یہ کرتا ہے کہ اس ہارس کو وہ کھانا کم دیتا ہے، پہلی چیز نمبر ون، کہ اس کی جو ڈائٹ، جو بھی خوراک ہے وہ کم کر دیتا ہے، نارمل سے ہاف کہہ لیں، یا ڈپینڈز آن کہ کتنا انٹرینڈ یا کتنا جنگلی گھوڑا ہے وہ۔ اور سیکنڈ کام وہ کیا کرتا ہے، نمبر ٹو از، کہ اس کے اوپر وہ ویٹ ڈالتا ہے، اس کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے، اسے یعنی کہ پل کرواتا ہے یا اس طرح کے کام۔ یہ ایک کنٹینیوسلی جب ایک ٹائم پیریڈ تک ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھوڑا کم کھا رہا ہے اور اس کے اوپر ویٹ بھی زیادہ ڈال رہا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی ایک سرٹن فلو میں آتے آتے آتے، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ اپنا جو بھی وہ مالک ہے اس کے آرڈرز کے مطابق ٹرین ہو جاتا ہے۔ یہ اس کو، اسے ٹرین کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور اب آپ اپلائی کریں اس کو روزے کے اندر، تتقون کا کیا مطلب ہے، کہ آپ پرہیزگار بن جاؤ، یعنی کہ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ ہم نے یہاں پہ ایک ہارس کی مثال لی کہ وہ اس اپنے مالک کا فرما بردار کیسے بن رہا ہے، اس کو ٹرین کیا جا رہا ہے، اور ٹرین کرنے کا یہ پیٹرن ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے ہمیں بھی ٹرین کرنے کے لیے ایک پیٹرن دیا، اور وہ یہ رمضان کی شکل میں، ایک تو آپ کی ڈائٹ کو کم کیا، آپ نے پورا دن کچھ نہیں کھانا، فوڈ انٹیک کم ہوا، سیکنڈ از، پھر آپ پہ بوجھ ڈالا، اللہ نے نمازیں بھی پابندی سے اور زیادہ، نوافل میں لوگ ہوتے ہیں، تہجدیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر تراویح بھی رات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، سارٹ آف نارمل لائف اسٹائل سے زیادہ بوجھ بھی پڑتا ہے اور فوڈ انٹیک بھی کم ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ فرسٹ رمضان سے آن ورڈ چلتے چلتے 20-25 رمضان تک बुरे से बुरा इंसान भी होता है, वो कम से कम उसके अंदर इतना तकवा आ जाता है, वो आपको मस्जिद में भी नज़र आ रहा होता है, और वैसे नमाजी नहीं भी होता, लेकिन ये एक रमज़ान की बरकत है, ज़ाहिर है हमारे लिए तो अल्लाह ने कहा, लेकिन ये जो अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ये इस पूरे प्रोसेस से गुजरने से ऑटोमेटिकली होता क्या है कि इंसान के अंदर तकवा आ जाता है, चाहे वो अनइंटेंशनल होता है, उसे पता भी नहीं होता कि मैं असल में मेरे अंदर तकवा आ रहा है, और वो हो रहा होता है रमज़ान की वजह से, और क्यों हो रहा होता है ये जैसे हमने बात की कि इन सारे कामों की वजह से हो रहा होता है, लेकिन ये रियलाइज़ हमें नहीं हो रहा होता, और नॉर्मली आम तौर पे एक सर्टन टाइम रमज़ान में आता है कि ऑटोमेटिकली लोग देखेंगे कि वो ज़्यादा मस्जिद की तरफ खींच रहे होंगे, या ज़्यादा नमाज की तरफ, या ज़्यादा दीन की तरफ ऑटोमेटिक रुझान बनने का बढ़ जाता है। अयाम मादूदात, यानी कि इन गिनती के इन दिनों में, गिनती के इन दिनों में मतलब ज़ाहिर है ऑफकोर्स वही रमज़ान का महीना, कि ये फर्स्ट से लेकर जो 29 रमज़ान का महीना है, और फिर आगे फरमाया फमन काना मिनकुम मरीज़न, अगर कोई तुम में से मरीज़ है, अवला सफ़रन, या कोई सफ़र पर है, ट्रैवलिंग कर रहा है, तो फ़ायदतुम मिन अयामिन उखर, तो यानी कि वो अयामिन उखर दूसरे दिनों में फिर उन काउंटिंग को पूरा करे, ठीक है, वो ट्रैवलिंग के दौरान या अपनी मरीज़ या बीमारी की वजह से रोज़े नहीं रख सकता, तो ठीक है फ़ाइन, बट उसके बाद उस काउंटिंग को वो पूरा करेगा, वो उससे फ़र्ज साकित नहीं होगा। वह अलल्लज़ीन युतीकूनहु फ़िदयतुन तुआम मिस्कीन, और फिर उन लोगों पर जो युतीकूनहु, जो इस्तेआत है और ताकत रखते हैं, तो उन पर है फ़िदया, कि फ़िदिया क्या है, एक फ़कीर को खाना खिलाना। फ़मन ततव्वा, खैरन फ़हुवा खैरुल लहू, जो कोई अपनी खुशी से खुशी नेकी करेगा तो वो नेकी उसी के लिए होगी, अपनी यानी अपने बेनिफिट के लिए होगी। व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, और ये बेहतर है कि तुम रोज़ा रखो ताकि तुम अगर तुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम वाकई समझ रखते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम रोज़ा रखो। ये थर्ड हुक्म आ गया रमज़ान के रोज़ों का। यहाँ पे ज़ाहिर है सबसे पहले ऑफ कोर्स तफसीर में देखेंगे सौम जो लफ्ज़ी मतलब है, इसका मतलब होता है इमसाक, यानी रुकने का, किसी भी चीज़ से रुकने को, बचने को सौम कहा जाता है। ये यहाँ पर शरीयत की इस्तलाह में रोज़ा मींस तीन चीज़ों से रुकने का, ब्रॉडली खाना पीना और औरत के साथ जमा, विच मींस मुबाशरत, तो इन तीन चीज़ों से रुकने का नाम रोज़ा है। और ज़ाहिर है ये काम सिर्फ सुबह जो सनराइज़ से लेकर सनसेट तक, इस पीरियड को शरीयत ने जो मुतायन कर दिया कि ये वो रोज़े का है, और ऑफ कोर्स नियत भी उसकी रोज़े की हो, कि एक बंदा है वो वैसे ही बस फास्टिंग तो कर रहा है बट उसकी नियत रोज़े की नहीं है, वो वैसे ही भूखा है, तो उससे तो अल्लाह को कोई, यानी उसका खाना छोड़ना तो इन इट सेल्फ अल्लाह को नहीं पसंद या चाहिए भी नहीं, अल्लाह को तो असल लअल्लकुम तत्तकून की खातिर रोज़ा रखवाना है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ आपने देखी कि ये जो कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले वालों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ था, तो इससे ये पता चला कि सिर्फ इस उम्मत में नहीं बल्कि पहले भी रोज़ा फ़र्ज़ था। तो आदम अले बात ये हो रही थी कि इससे पिछली उम्मतों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ था, उसी तरह जैसे हम पर है, मोर और लेस ज़ाहिर है वो दिनों में कुछ फ़र्क हो सकता है, जैसे ज्यूज़ आशूरा के रोज़े वगैरह रखते थे, और हमारे मुसलमानों पर भी रमज़ान से पहले वही रोज़ा असल में फ़र्ज़ था। और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अम्बिया की शरीयतों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में रोज़े उसी तरह से फ़र्ज थे जैसे कि नमाज़ फ़र्ज थी।
लेकिन 30 रोज़े
नहीं, 30 इस तरह से नहीं कि रमज़ान के रोज़े तो हमारी ख़ास इस उम्मत की एक फजीलत है ज़ाहिर है, लेकिन दूसरी उम्मतों पर अलग दिन थे या अलग टाइम्स या अलग फॉर्म्स थे, जैसे वो लोग आशूरा का रखते थे, या अभी आगे आयतों में भी आएगा वो जो शुरू में रोज़ा होता था कि अगर कोई सो गया अगली आयतों में वो बात आने वाली है, लेकिन समझाने के लिए कि अगर कोई सो गया तो उसके बाद वो कुछ नहीं खा सकता, कुछ इस तरह का ऑर्डर था। आप पूरा दिन आए इंसान, वो फिर एक वाकया भी हुआ, एक सहाबी थे, बुज़ुर्ग थे, वो आए और उन्होंने बीवी को कहा मुझे कुछ खाने को दो, और फिर उनकी आँख लग गई। अब आँख लग गई और वो उठे तो अब ऑटोमेटिकली, उस वक्त ये अंडरस्टूड था क्योंकि पुरानी शरीयतों वाला रोज़ा रख रहे थे, उस वक्त ये होता था कि ये रोज़ा होता था। फिर कैटेगोरिक आगे अभी आएगा आयत में इंशाल्लाह, अगली आयतों में आप देखेंगे कि खैत अलबियाज़ी मिन अलखैत अलअस्वद के, यानी इस वक्त से रोज़ा और इस वक्त तक होगा, वो उसकी डिटेल अभी आगे आ रही है। तो फॉर्म्स डिफरेंट थे ज़ाहिर है, वो एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे नहीं होते थे, बट रोज़ा उन पे फ़र्ज था किसी ना किसी फॉर्म में। और ज़ाहिर है फिर आगे हमने लअल्लकुम तत्तकून को डिस्कस कर लिया कि इससे तकवा आएगा इंसान के अंदर। और फिर कुछ जो छोटे मोटे अहकाम इससे मिलते हैं कि अगर कोई मरीज़ है, फ़मन काना मिनकुम मरीज़न क्योंकि आ रहा है, तो ज़ाहिर है उसके ऊपर से रोज़े की उसे एक इम्यूनिटी हासिल होगी, क्योंकि आगे एक आयत में ये भी आ रहा है ना, वला युरीदु बिकुम उसर, के कोई इरादा अल्लाह ने इस चीज़ का ज़ाहिर नहीं किया हुआ कि तुम्हारे को उसर कहते हैं परेशानी को या मुश्किल को, तंगी को, तो कोई तुम मुश्किल डालने का मकसद नहीं था अल्लाह का, तो इसलिए आगे आएगा वो भी। तीसरी चीज़ यहाँ पे अला सफ़र इन आया है जी, अला सफ़र इन आया, इला सफ़र या सिर्फ सफ़र मुतलक नहीं आया, अला कहते हैं कि आप सफ़र पर हो। एक सफ़र है कि आप अपने घर से यहाँ आए हैं मेरे पास, जो भी कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस करके, ये 2-4-5-10 miles होगा या इतना वर्स मोर और लेस, तो इसे सफ़र नहीं कहा जाता। कहने को लुगवी एतबार से तो ये सफ़र ही है कि आप वहाँ से यहाँ ट्रैवल करके आए हैं, बट अला सफ़र इन से इस बात पर हो गया कि आपका एक शरई जो सफ़र समझें, जो अल्लाह ने डिफ़ाइन किया हुआ है, आप उस सफ़र पर हो। और वो क्या है कि एटलीस्ट यानी जो फुकाए कराम ने यहाँ पे 48 माइल्स की जो या 75 किलोमीटर्स की एक फिर उससे अहदीस वगैरह की रोशनी में डिटेल निकाली है कि 3 दिन का वो ऊँट का सफ़र होता था उस ज़माने में, कि आप एटलीस्ट इतना दूर हो अपने होम टाउन से, हम होम टाउन की बाउंड्री से, और फिर वो सफ़र पे जब आप हो उस दौरान आपके ऊपर उस रोज़े की इम्यूनिटी आपको हासिल हो जाएगी ज़ाहिर है। और फिर उसकी भी सफ़र की भी जो डिटेल्स हैं सारी, वो फुकाए कराम ने बहुत डिटेल में हमें बताई हुई हैं। जैसे 15 दिन, 3 दिन से लेकर ऑनवर्ड्स 15 दिन की जो टाइम लिमिट होती है वो सफ़र कहलाएगा। इफ़ यू आर गोइंग समवेयर फॉर मोर देन 15 डेज तो वो सफ़र नहीं होगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज जब 15 दिन से ज़्यादा कोई आदमी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के ऊपर जाके रुक जाएगा तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे अपना रहने का, खाने पीने का और सारे अरेंजमेंट्स करेगा, तो उस सूरत में वो सफ़र की डेफिनेशन से फिर निकल जाएगा। 15 दिन से कम की जिसकी इंटेंशन है किसी भी जगह जाने की, तो वो सफ़र तक उसमें काउंट होगा।
पूरे 15 दिन रोज़े ना रखे,
उसके बाद ऑप्शन है ना रखे, रख ले तो रख ले, रख ले तो सही है उसको इंशाल्लाह ज़रूर ज़्यादा, हाँ वो ना रखे। हम लोग लास्ट से लास्ट ईयर जैसे जैम्बिया जा रहे थे एतकाफ़ पे, तो हमारे पास ऑप्शन था, हमारे बहुत सारे साथियों ने रोज़ा नहीं रखा बीच में, क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं तो आप सफ़र पे हैं, आप रोज़ा ना रखें, तो बहुत लोगों ने उसको फ़ायदा भी उठाया ज़ाहिर है, और कोई गैर शरी चीज़ नहीं है उसको उठा सकते हैं। लेकिन बहरहाल अगर नहीं भी रखा तो फ़ायदा तो मैं नया में नौखर आगे आ रहा है कि नहीं भी रखा तो फिर सही है, बाद में उसकी कैलकुलेशन को पूरा कर किया जाएगा, क्योंकि फ़अलैहुल क़ज़ा ये भी अल्लाह सिर्फ़ फरमा सकते थे, लेकिन फ़ाइदतुम मिन अयामिन उखर फरमा कर ये अल्लाह ने यहाँ पे समझाना चाहा कि मरीज़ और मुसाफिर पर फौत शुदा रोज़ों की क़ज़ा सिर्फ उस सूरत में वाजिब होगी जबकि मरीज़ सेहत के बाद और मुसाफिर मुकीम होने के बाद इतने दिनों की पाए जिन्हें क़ज़ा कर सके। अच्छा सॉरी मैं ये मेरे से मिस हो गया, फ़अलैहुल, अगर अल्लाह फरमाते हैं फ़अलैहुल क़ज़ा कि इसके ऊपर होगी क़ज़ा, तो वो क़ज़ा उसके ऊपर लाजिम हो जाती, फिर उसको रखना ही रखना होता। लेकिन अल्लाह ने क्या फ़रमाया, फ़ाइदतुम मिन अयामिन उखर, यानी कि जब उसकी ट्रैवलिंग कम्प्लीट हो गई और या वो मरीज़ था, अब वो मरीज़ उसकी जो भी बीमारी है वो दूर हो गई और अब वो सेहतमंद हो गया और उसका या फिर उसका सफ़र ख़त्म हो गया, अब उस सूरत में वो उतने डेज़ उसको उसे मिलें कि वो रोज़ा रख पाए, इसलिए फरमाया अयामिन उखर, اگر ہوتا نا فعلی القضاء تو اب قضاء اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہے, اور اگر وہ اس صورت میں مر جاتا کہ اس نے قضاء کمپلیٹ ہی نہیں گئی تو وہ اس کے گناہگار بھی ہو سکتا تھا اور اس کے اوپر کفارہ بھی اس کے ورثہ پر لازم ہو جاتا. لیکن یہاں پہ کیا فرمایا, فعدت من ایام نخر, کہ اب وہ سفر ختم ہونے کے بعد اتنے دن زندہ بھی رہا, اس حالت میں بھی رہا کہ اس کے پاس انرجی بھی تھی اور اس کے پاس وسائل بھی تھے, اور پھر اس نے روزہ رکھا.
اس کے پاس انرجی نہ ہو, زندہ ہو لیکن انرجی نہ ہو,
لیکن اگر وہ نہیں ہو تو پھر مریض ہی ہے نا. ہاں پھر اس صورت میں اگر وہ مریض ہی ہے, اوبویسلی اس کے پاس یہ فزیکل اس کے استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ رکھے, تو وہ تو پھر ڈیفینیٹلی ظاہر ہے فدیہ ہی دے گا.
وہ فدیہ ایک
مسکین کو کھانا کھلانا ایک روزے کے بدلے, بالکل. اور بعض لوگ اس سے یہ بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہاں پہ آگے آیا ہے نا عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں ان کو یہاں پہ اس طرح کی بات ہی, لیکن اس کے فوراً بعد ہی اس آیت کے اندر ہی اگر آپ غور کریں تو اینڈ اس کے اگلا ہی جملہ کیا آ رہا ہے, اَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, بہتر تمہارے لیے بہتر کیا ہے کہ تم روزہ رکھو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی اللہ نے ٹیکنیکلی فرسٹ آف آل تو یہ آیت پہلے کی آگے اس آیت کی کلیریفیکیشنز آ رہی ہیں, اور سیکنڈلی اگر کوئی بندہ طاقت رکھتا بھی ہے اور وہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے تو اللہ نے کلیئرلی فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ تم روزہ رکھو, تمہارے لیے بہتر یہ ہے, اللہ کا آرڈر ہے. اور دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے من شہیدہ منکم الشہر فلیصم, اس آگے آ رہے آیت میں, یعنی کہ تم میں سے جو کوئی بھی رمضان کا مہینہ پاتا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. تو یہ کیٹیگوریکلی اس کو مس آؤٹ آف کانٹیکٹس کوٹ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یہ آیتوں سے کیٹیگوریکلی یہی پتہ چلتا ہے کہ روزہ ہمیشہ ہر حال میں مریض یا سفر کے علاوہ فرض ہے. یہ اور مریض اور مسافر کے اوپر بھی اس کی ایام نخر کے ذریعے اس کی قضاء لازم ہے. اس کے بارے میں بخاری مسلم اور ابو داؤد نسائی ترمذی طبرانی یہ ساری احادیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب میں ایک حدیث یہ حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل ہوئی ہے, جس کے جب یہ آیت وعلی الذین یطیقونہ نازل ہوئی تو ہمیں ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت, کیونکہ یہ رمضان کے روزوں کا پہلا سٹیپ تھا اور اس وقت انہیں یہ اختیار دیا گیا کہ چاہو تو روزہ رکھ لو اور چاہو تو روزہ نہ رکھو. لیکن اس کے بعد پھر دوسری آیت جب نازل ہوئی من شہیدہ منکم الشہر فلیصم, اس کے بعد یہ لازم ہو گیا کہ اب آپ کے وہ آپشن نہیں ہے, اب آپ کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. تو یہ جیسے ہر آرڈر اللہ نے گریجولی, جس طرح سے شراب کا آرڈر تھا وہ پہلے ہی آیا کہ نماز کے قریب نہیں جاؤ, پھر آیا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, اور اسی طرح سے تھرڈ سٹیج پہ جا کے آیا کہ اب نہیں ہے. تو یہ گریجول آرڈر کا پروسیس ہے, اسے ایک آؤٹ آف کانٹیکٹ ایک آیت کو نہیں لینا چاہیے. اور مسند احمد میں اسی حوالے سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ایک بہت ہی ڈیٹیل حدیث ہے, جس میں نماز کے معاملات میں بھی ابتدائی اسلام میں وہ فرماتے ہیں کہ تین قسم کے ڈفرینٹ جو ہیں وہ تغیرات یعنی کہ چینجز ہوئے, اور اسی طرح سے روزے کے معاملے میں بھی تین ڈفرینٹ چینجز ہوئے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں, پہلا یہ چینج ہوئے گا, آگے آپ دیکھیں گے وہ سونے والا جو میں بتا رہا ہوں وہ چینج ہوا, اور پھر ایک تھرڈ چینج تھا کہ جو مباشرت والا کوئی بھائی بیوی کے ساتھ, اس زمانے میں یہ بھی تھا کہ روزے کے علاوہ پورے دن رات 24 گھنٹے میں کچھ کر ہی نہیں سکتا, تو اس پہ بھی ظاہر ہے ایک ان نیچرل سا سارٹ آف ایک بات تھی, تو اس پہ بھی پھر کلیریفیکیشن آگے یہ سب چیزیں آ رہی ہیں انشاءاللہ نیکسٹ آیتوں میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خیر موٹی موٹی بات یہ ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ہر مہینے میں تین روزے, یعنی وہ جو ہم نے ڈسکس کیے تھے 14, 15, 16 رمضان کی, اور عاشورہ کا روزہ جو 10th محرم ہے, یہ سب رکھتے تھے. اور پھر جب رمضان کی فرضیت کے آرڈرز نازل ہوئے اور کتب علیکم الصیام ہوا, تو پھر ہر شخص کو یہ آرڈر دے دیا اور پھر یہ آپشنل بھی دیا اس وقت, اور پھر فائنلی تھرڈ سٹیج میں من شہیدہ منکم الشہر فلیصم, یہ کلیئرلی کہ اب روزہ سب کے اوپر فرض ہو گیا. اور آگے اگلی آیت میں انشاءاللہ آئے گا, یہ میں ابھی اس پہ ہی آ رہا ہوں. تھرٹی थर्ड जो मैंने फरमाया सोने वाला, और फिर आगे आएगा हिल्ला लकुमुल लैलत सियाम और रफासा, उसमें ये भी पता चला कि वो मुबाशरत भी फिर जायज़ हो जाएगी रात के टाइम जब नॉन रोज़े की हालत में। और बहरहाल मरीज़ है या उस सूरत पे जिस जो नहीं रख सक रहा, तो शरीयत की इस्तेलाह में उसका जो फ़िदिया है वो होता है निसफ सा गंदुम, यानी रफली आजकल के ज़माने में जो मैंने लास्ट ईयर चेक किया था ये बनता है 100 रुपये। अब इन्फ्लेशन के हिसाब से ज़ाहिर है वो महंगा होता जाएगा वक्त के साथ साथ, लेकिन 125 रुपये प्रॉबली इसकी रेंज में इतना ये पैसे भी सदका कर सकते हैं। मैं वो फ़िदिया उस सूरत में बता रहा हूँ, जैसे नमाज का और रोज़े का फ़िदिया सेम है। कोई अपने किसी डिसीज़ जो यानी के पास अवे हो चुका है, जो बंदा फौत हो चुका है, उसके लिए भी देना चाहे कि उसकी नमाजों का या रोज़ों का मैं दे रहा हूँ, तो ये रफली अमाउंट ये बनता है अप्रॉक्सीमेटली 125 रुपये। वो मैं एग्जैक्ट रमज़ान में आप किसी को होगा तो चेक करके बता दूँगा। अगर कुछ क्वेश्चन हो वरना हम आगे चलते हैं। हाँ ऐसा नहीं है कोई किसी के अंदर कैपेसिटी नहीं हो। हाँ तो यानी अक्सर ऐसे होता है लोग कोई पहले नमाज़ें जो नहीं पढ़ता मिसाल के तौर पे, और फिर बाद में अब उसके बाद इतनी इस्तेआत ही नहीं है कि वो दिन में अपनी कज़ाएँ करे, समझे कि उसने 20 साल नमाज ही नहीं पढ़ी, या उसे बिल्कुल बुढ़ापे में जाके याद आया अब मैं नमाज़ पढ़ूँ। अब वो दिन की अगर कज़ा करने पर आएगा तो वो तो पूरा दिन इसी में लगा रहेगा।
पांच नमाजों के 100
अप्रॉक्सीमेटली
अप्रॉक्सीमेटली
मैं एग्जैक्ट 100 रुपये लास्ट ईयर 100 रुपये था। अब इस साल फिदिये का अमाउंट वो तो जगह जगह आप किसी से भी पूछ सकते हो, फिदिये का अमाउंट जो भी होता है फिदिये का अमाउंट सेम होगा मोर और लेस, आप जहाँ पे भी पता करेंगे। लास्ट ईयर 100 रुपये था, अभी आप 125 रुपये लगा लें ज़रा सी इन्फ्लेशन के हिसाब से ज़ाहिर है वो रेट ज़्यादा होगा। आगे चलो। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीह अल-क़ुरआन हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान का महीना वो है जिसमें उन्ज़िला फ़ीह अल-क़ुरआन, इसमें क़ुरान नाजिल हुआ, हुदल लिन्नास लोगों के लिए हिदायत, व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान और लोगों के लिए वाज़े दलीलें, बय्यिनात कहते हैं रीज़निंग को, वाज़े तौर पर रोशन दलीलें, मिनल हुदा हिदायत के लिए, और वल फुरकान, और फुरकान कहते हैं उसको जो फ़र्क कर देता है, यानी हक और बातिल के दरमियान, राइट और रॉन्ग के दरमियान जो वाज़े फ़र्क कर देता है उसे फुरकान कहते हैं। इसीलिए वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके बारे में फ़ेमस है, ही वाज़ नोन के वो फ़ारूक, उनका टाइटल इसलिए था कि वो हक और बातिल के दरमियान वाज़े तौर पर फ़र्क वो करने के लिए ही मशहूर थे, इसीलिए उन्हें उनका नाम भी फ़ारूक था, और ये इसीलिए से फिर फुरकान यहाँ पर कहा, इसीलिए और क़ुरान का नाम भी एक फ़ुरकान है, और ये इसीलिए यहाँ पे भी का। बहरहाल अब वो आयत आई जो मैं पीछे जिक्र कर रहा था जिसका फ़मन शाहिदा मिनकुम अश्शहरा फली यसुम, जो कोई भी रमज़ान का महीना पाए उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। अब इससे इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में इंशाल्लाह नहीं जाऊँगा यहाँ पे, लेकिन इसके ऊपर फुकाए कराम ने बहुत लंबी लंबी बहस डिफरेंट हैगा, और ख़ास तौर से आजकल के ज़माने में क्योंकि ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा हो गई है। एक इंसिडेंट मैं आपसे ज़िक्र करता हूँ कि लास्ट 2 साल पहले मैं रमज़ान में था एतकाफ़ पे जैम्बिया में। अच्छा, अफ्रीका में वहाँ पे 29 रोज़े हुए और हमारे यहाँ पाकिस्तान में 30 रोज़े हुए। जब मैं वहाँ से उड़ा तो टेक्निकली चांद रात इनफैक्ट चांद नज़र नहीं आया था रात के टाइम, उस वक्त तक चांद कन्फर्म नहीं हुआ था, वी डिडंट नो कि कल चांद है या नहीं है। हाफ़ वे थ्रू ओवर जब ओशन के हम ऊपर थे तो दुबई के पास समवॉट, जब हम दुबई में लैंड हुए तो हमें पता चला अब दुबई में ईद है आज, तो रोज़ा नहीं रख सकते डेफिनेटली। लेकिन डेढ़ घंटे के स्टे के बाद दुबई से जब हम कराची आए तो यहाँ रमज़ान चल रहा था। तो अब हमारे लिए ऑर्डर ये था कि अब हम कुछ खा पी नहीं सकते, समझे रफली हम सुबह 10:30 बजे यहाँ लैंड हुए हैं, हमारा रोज़ा नहीं है, हम तो वहाँ ईद थी दुबई में और हम रोज़ा रख ही नहीं सकते थे। लेकिन हम यहाँ पहुँच गए तो यहाँ पे फुकाए कराम ने इस पे ये मसला इस तरह से निकाला है, फमन शहीदा मिनकुम अश्शहर, तुम यहाँ पे आए और यहाँ पे ये रमज़ान चल रहा था तो फली हुसैन अब तुम्हारे पर तुम्हें जायज़ नहीं है कुछ भी खाना पीना। तो इस पे फिर फुकाए
रोज़ा हो जाएगा, नियत हो जाएगी,
रोज़ा नहीं होगा वो, लेकिन आपने वो महीना पा लिया तो अब आप उस महीने के एहतराम में भी कुछ खा पी नहीं सकते। अगर आप उस जगह पे पहुंच गए जहां पे रोज़ा चल रहा है, एक मुसाफिर है, मुसाफिर ही अगर आ जाता, मैं तो खैर आपको एक वर्स बिल्कुल ही कंफ्यूजिंग थोड़ा सा,
हाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज बात हो गया हूँ कि जिस तरह आप हम दुबई जाते
जी
4 दिन के लिए
सही,
और हम रोज़ा नहीं रखते
सही है,
लेकिन हम क्या खाना पीना नहीं खा सकते
वहाँ पे,
रोज़ा रमज़ान चल रहा है,
रमज़ान चल रहा है, लेकिन आप वहाँ पे मुसाफिर हैं तो आप खा पी सकते हैं, मगर ज़ाहिर है उस मुल्क के लॉ के मुताबिक, क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री है और
आप अपने घर में बैठे हैं
हाँ
या होटल में,
टेक्निकली आप मुसाफिर हैं वहाँ पे, हाँ तो फिर इशू नहीं है।
तो जब आप यहाँ आए थे तो आप सफ़र में थे ना?
सफ़र में था, बट मैं यहाँ अपने होम टाउन में आ गया ना, मैं सफ़र कम्प्लीट हो गया ना, कंक्लूड हो गया सफ़र।
तो लेकिन आपका तो रोज़ा नहीं है, तो
रोज़ा नहीं है,
होम टाउन में भी अगर रोज़ा नहीं है तो इंसान खा तो सकता है, खा पी सकता है,
टेक्निकली तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस आयत के एहतराम में हमें फुकाए कराम ने, हमने जिनसे मशवरा किया उन्होंने कहा कि फमन शहीदा मिनकुम, आपने आप गवाह हो गए रमज़ान के महीने
तो समझ गया कि एहतराम में तो
एहतराम में अब आप,
लेकिन अगर आपने खाया घर पे आप अपने अंदर खा रहे हैं खाना, क्योंकि रोज़ा तो नहीं है,
रोज़ा तो नहीं है,
तो फिर क्या उसका वो है, उसका रीज़न मैं उसका भी द रीज़न आई एम आस्किंग, कि वरना फिर ये तो समझ में बात नहीं आई कि आप वो रोज़ा जो आपने मिस किया उसको आपको रखना है आगे चल के,
आगे उसकी कज़ा करनी है,
कज़ा करनी है सफ़र के बाद, तो
नहीं इस सूरत में कज़ा भी नहीं करनी,
एतराम कि यहाँ तक कि गोरों के साथ मैं जब रोज़ा होता था, रमज़ान होता था, मैं काम कर रहा होता था, तो वो लोग मुझसे पूछते थे कि इस रोके फीट या काफ़ी नहीं खाते थे मेरे साथ,
सही कह रहे हैं,
मतलब वो तो नॉन मुस्लिम होते क्रिश्चियन थे,
आई अंडरस्टैंड,
लेकिन
सही कह रहे
हैं, पहले किताब तो थी, लेकिन ये था कि दे वुड रिस्पेक्ट,
दे वुड रिस्पेक्ट,
तो ये तो मैंने खुद देखा है, तो रिस्पेक्ट करते थे या पूछते थे या फिर बोलते थे कि आप उधर जाके खा लो यार, इसका रोज़ा इधर इधर नहीं खाओ उसके सामने, या एकदम खा लेते हो सॉरी सॉरी सॉरी
आप सही
वापस चले जाते हो,
सही कह रहे हैं,
तो कहने का मकसद ये कि लेकिन
आप सही कह रहे हैं,
तो एक चीज़
मैंने
एक्चुअली लीगल इस्लाम क्या कहता है कि आप
असल में ये उन मसाइल में से, मैंने ये आयत शुरू करने से पहले एग्जैक्टली यही बात की, अब ये उस आयत में से है जिसमें फुकाए कराम की आपस में बहुत लंबी लंबी बहस इसमें शुरू हुई है। आप एक मुफ्ती साहब से मशवरा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो वो बात करेगा जो मैंने इनिशली की कि नहीं कुछ नहीं खा सकते, एक दूसरा सेकेंड ओपिनियन लेंगे तो आपकी फिर पॉइंट भी वैलिड है कि आपका टेक्निकली रोज़ा तो है नहीं, आप तो ईद करके आए हैं, आप जो बंदा ईद करके आया है वो तो नहीं,
मेरा तो ये भी पॉइंट है कि सिर्फ इस पॉइंट पे नहीं, इफ यू आर नॉट फास्टिंग, समझ आप यहाँ है मुकीम और आपने रोजा नहीं रखा
जी,
ये वजह से कि आपकी तबीयत खराब हो गई,
उल्टी
हो गई,
ठीक है
रोजा टूट गया, तो अब क्या आप नहीं खाए पूरा दिन?
नहीं नहीं,
इस्लाम में तो अलाउड है ना कि आप खा सकते
हैं, तो
आपका तो रोजा नहीं है,
वो एक डिफरेंट सिनेरियो है,
जब आप जाहिर ही बताओ रिस्पेक्ट, आप लोगों के सामने नहीं खाएंगे, आप बाहर रोड पे बैठ के बर्गर नहीं खा लेंगे, वो तो आई अंडरस्टैंड, पर अपने घर के अंदर बैठ के आप पानी पी रहे हैं, आप अपना खा रहे हैं,
अगर रोजा नहीं है या टूट चुका ही है, उल्टी हो गई या व्हाटएवर रीजन से, तो उस सूरत में तो खा सकते हैं, उस सूरत में तो ऑफ कोर्स घर के,
वही तो मैं बोल रहा हूं कि एहतराम तो
पीछे का होता है, बस वो ये एहतराम वाली बात है, बाकी आपका पॉइंट वैलिड है, आपका पॉइंट वैलिड है, मैंने इसीलिए शुरू में कहा इस पे, लेकिन
तो बाज फुका होता था कभी रोजा टूट गया तो अब चले यार पानी,
आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल
कोक पी लो
आप सही कह रहे हैं, आई अग्री आप सही कह रहे हैं, मैंने तो खैर इसीलिए इस आयत के शुरू में यही बात की कि इस पे फिर फुका कराम ने बहुत लंबी डिटेल, एक तरफ आपको ये ओपिनियन भी मिलेगा ये भी मिलेगा, देर इज़ नो राइट और रॉन्ग इन दिस, आपका इसके अंदर असल मामला क्या है, तकवा हा ना वाला मसला है, वो जो हदीस में आता है ना, आपके अपने दिल का एक मामला है, आपकी अपनी सेटिस्फैक्शन है, दोनों तरफ आपको दोनों तरफ उलमाए कराम की ओपिनियंस मिलेंगे, रखने की फॉर्म में भी, कुछ ना खाने वाले भी फॉर्म में, और खा के इजाज़त देने वाले भी फॉर्म में, दोनों तरफ ओपिनियंस होंगे, तो बहरहाल ये एक अपना एहतराम वाली बात है, इसमें
ये तो समझ में आई है,
एहतराम वाली बात है, नहीं आप सही कह रहे हैं, आई एग्री विद यू, इस पर दोनों तरह के उलमा की आपको ओपिनियंस मिलेंगे, वमन काना मरीजन अवला सफ़र इन फ़ायदा तुम में नयाम नखर, ये वही आए दोबारा रिपीट हुई कि जो कोई भी मरीज़ हो या सफ़र पर हो तो फ़ायदा तुम में नयाम नखर, वो दूसरे दिनों में उसकी काउंटिंग पूरी करे, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह ताला का इरादा ये है कि तुम्हारे साथ आसानी फरमाए, ये इरादा नहीं है कि तुम्हारे साथ मुश्किल फरमाए। वलितुकमिल्लुल्इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाहु अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम तुक मिलू यानी कि उस काउंटिंग को पूरा करो, और वो इसलिए है कि तुम्हारे अंदर कोई बड़ाई या किबर ना आ जाए। अल्लाह की अला इस बात पर कि तुमको, अला मा हदाकुम इस बात पर कि तुम्हारे को अल्लाह ने जो हिदायत अता फरमाई, वला अल्लकुम तशकुरून और इसलिए कि तुम शुक्र गुज़ार बंदों में से बन जाओ। तो खैर ऊपर वो गिनती के रोज़ा आया था, यहाँ पे रमज़ान की ख़ास तौर से बात है। एक सिर्फ छोटी सी बात मैं पहले इसमें कर दूँ, आप यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे क्या है, रमज़ान शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। आगे पहले पता नहीं मैंने बात की है या नहीं, लेकिन कहीं कहीं पे कंफ्यूजन होता है, कोई सवाल ये करता है कि कुरान तो नाजिल हुआ था 23 सालों में।
हाँ, ये हमने शुरू में बात की,
शुरू में की थी हमने
जब कुरान की बात चल रही थी।
अच्छा,
तो आपने सवाल किया था कि आप ये नाजिल का क्या है, तो उसमें आपने समझाया था, और पहले से भी इस पे
हुई होगी, जाहिर है डेफिनेटली हुई होगी,
कि वो कुरान तो नाजिल तो हो गया था अर्श, मतलब उस पे अर्श पे, लेकिन अल्लाह ताला ने दूसरी दफा जब नाजिल हुआ तो वह उसके अल्लाह ताला ने आयत लेकिन नाजिल एक साथ कुरान पूरा
हो गया था। वही सिर्फ मैं बेनिफिट के लिए लोगों के एक बात यहाँ पे करना चाहूँगा, उन जिला कहीं पे कुरान में आ रहा है इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, इसी तरह यहाँ पे आया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन जिला फ़ील कुरान। अब आपने क्योंकि थोड़ी सी सर्फ नाफ स्टडी की है तो आप ये बात शायद समझ सकेंगे इंशाल्लाह आसानी से। एक है अनज़ला युनज़िलु इन्ज़ालन, ये एक सीगा ऐसा बनता है, और दूसरी जगह आएगा तबारक नज़ल अल-फ़ुर्क़ान या तंज़ील, लफ्ज़ आता है तंज़ील, एक लफ्ज़ होता है नज़ला युनज़िलु तंज़ीलन और एक होता है अनज़ला युनज़िलु इन्ज़ालन। इसमें फ़र्क एक तजदीद के फ़र्क के साथ, मेन मादा वही है नून ज़ाल और लाम, बट ज़रा सी डिफ्रेंशिएशन के सीगे के साथ। उनज़िला का मतलब होता है वन टाइम, और नज़ला युनज़िलु तंज़ीलन ये भी क्योंकि वर्ड्स जगह जगह कुरान के लिए ही जगह जगह आ रहे आगे आयतों में, वहाँ पे मीनिंग होता है तदरीजन यानी कि इन सीक्वेंस। यहाँ पे ख़ास तौर से ये रमज़ान की क्योंकि बात हो रही है, तो उनज़िला फ़ील कुरान या इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र आएगा, वहाँ पे मर्द है ऊपर जो लोहे कलम कह लें या जिस जगह पे भी अल्लाह ने महफूज फरमाया वो वन टाइम कुरान नाजिल हो गया, और फिर आगे जो तदरीजन 23 सालों में कुरान नाजिल हुआ वो नज़ला युनज़िलु तंज़ीलन होगा। ये रमज़ान के महीने में शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान का मतलब ये है कि रमज़ान के महीने में उस अर्श पर या लौह कलम पर या जहाँ पे भी कहें वहाँ पे पूरा कुरान वन टाइम नाजिल हो चुका था लैलतुल क़द्र में। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई शक की बात नहीं। तो इसमें वो क्लैरिटी के साथ शहरु रमज़ान आ गया साथ में, ज़ाहिर है। तो एक बात तो आपको क्लियरली पता लग गई इसकी फजीलत यहाँ पे रमज़ान के महीने की, क्योंकि पीछे आया था अय्याम मादूदात, इन गिनती के दिनों में जो नंबर्स है। तो बहरहाल यहाँ पे क्लैरिटी एक तो रमज़ान की साथ में हमें मिल गई। फिर इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ अकवाल है, रिवायत मुस्नद अहमद में हज़रत वासला बिन असका रज़ी अल्लाह अनु की, और उनकी रिवायत के मुताबिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो सहीफ़े थे वो रमज़ान की फ़र्स्ट तारीख को नाजिल हुए, पहली रमज़ान को, और तौरात 6 रमज़ान को नाजिल हुई, 6th रमज़ान को, इंजील 13th रमज़ान को, और कुरान 24th रमज़ान को नाजिल हुआ। ये इस रिवायत के मुताबिक है। एक दूसरी रिवायत है हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की, ऑड डेज 24th रमज़ान मीन्स 23rd नाइट हो जाएगी प्रॉबेबली। ये एक रिवायत है, इसमें मुख्तलिफ अकवाल हैं, क्योंकि शब कदर का भी अगर आप देखें तो ये अजम्पशंस हैं कि कौन सी रात है एग्जैक्टली, आखिरी 10 रातों में से
कोई भी रात है मोस्ट प्रोबब्ली, और उसमें स्टार्क रात में
27 वो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी।
और मुझे ये कंफ्यूजन होता है कि हम लोग अमेरिका में बैठे हैं 27 रमजान कुछ और है, पाकिस्तान में 27 रमजान, और कुरान तो एक ही एक उस टाइम पे नाजिल हुआ है ना, तो वो टाइम कौन सा था कि उस टाइम पे अमेरिका में कुछ और टाइम होगा, इधर कुछ और होगा, तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं शबे कदर अमेरिका में, लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान में शबे कदर नेक्स्ट डे है। ये हमेशा कन्फ्यूजन रहा है,
बट इसके बारे में भी ये आगे आयतों में जहाँ पे आएगा ना कि आप चांद देखो, ये आगे आयतों में आ रहा है, तो अल्लाह ने ये भी क्लैरिटी हमें ये दी कि आप अपने अपने इलाकों में, क्योंकि उस वक्त कोई सैटेलाइट्स का दौर था नहीं, कम्युनिकेशन का दौर था नहीं, तो जो कोई अपने अपने ज्योग्राफिकल लोकेशंस में बैठा हुआ है वो उस हिसाब से चांद देखे और रोज़े रखे, चांद देखे और इफ्तार कर ले, तो उसको ये सारी डिटेल्स जो यहाँ पे आ रही है। और जहाँ तक डेट्स का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है और वल्लाह आलम उसकी नॉलेज में है। हम लोग
बल्कि हमारा क़यामत में तो एक दिन दुनिया की पूरी ज़िंदगी है, कितने दिनों की है
तो
आखिरत के।
हाँ बिल्कुल, और वल्ला आलम। बहरहाल खैर, उलमा यही फरमाते हैं आखिरी 10 रातों में इतकाफ़ का मकसद यही होता है कि चलें जो भी रात है वो मोर और लेस वो बंदे को मिल जाए और नसीब हो जाए। बहरहाल एक दूसरी रिवायत हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की, उसके मुताबिक ज़बूर वॉज ये नाजिल हुई थी दाऊद अलैहिस्सलाम की, बिल्कुल इसकी इतनी एग्जिस्टेंस अब नज़र नहीं आती किसी बुक के अंदर, फर्स्ट टेस्टमेंट या सेकंड टेस्टमेंट भी। और वेल, अगर आप मेरा ओपिनियन पूछें तो मुझे नहीं पता लोग उसे तौरात या इंजील क्यों बोलते हैं, और इस ये हम मुसलमान ज़्यादा बोलते हैं, जो नॉन मुस्लिम या जो उसके बिलीवर्स हैं। हाँ हम लोग तो ये बोलते हैं, हम बोलते हैं, लेकिन आप जो इसके मानने वाले हैं वो तो इसे तौरात या अंजील नहीं बोलते,
नहीं, वो बोलते
वो तो फर्स्ट टेस्टमेंट और सेकंड टेस्टमेंट, तो
वो
हम क्यों बोलते हैं ये मुझे, मेरे पास इसका ये जवाब नहीं है कि यानी ये किसने कहां से या कैसे ये
नाम इस पे नहीं है। कुरान पाक में तौरात,
देखें कुरान पाक में तौरात वो किताब है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील वो किताब है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, बिल्कुल आपकी सही बात, लेकिन ये जो इंजील है ये तो पॉल ने लिखी है बाद में ना,
ये तो मैं तो
मतलब ये
मैं बिलीव करता हूँ कि जो सारे सहीफे ज़बूर इंजील तौरात ये सब जो है ये आए चेंज हुए, जो ओरिजिनल्स है वो नहीं है,
बट ये तो लिखे ही बाद में गए। मेरा क्वेश्चन ये होता है कि
ओरिजिनल तो नहीं है ना,
ओरिजिनल भी नहीं है और
कुरान पाक हमने
सिर्फ कुरान ही
गारंटी ली उसके प्रिजर्वेशन के लिए,
और है प्रिजर्व है वो तो नजर आता है। बट मगर मैं जो पॉइंट मेक करना चाह रहा था वो ये था कि हम लोग मुसलमानों के अंदर ये चीज़ ज़्यादा फेमस है या कॉमन है कि ये तौरात है ये इंजील है, अगर आप उसके अपने बिलीवर से पूछेंगे वो तो उसको तौरात या इंजील नहीं मानता, वो तो इसको फर्स्ट टेस्टमेंट बोलता है या सेकंड टेस्टमेंट बोलता है या बाइबल बोलता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ के प्रॉबली हमें उसको शायद तौरात या इंजील पता नहीं बोलना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि वो इन इट सेल्फ तो कोई अल्लाह का कलाम ही नहीं है, वो तो अगर आप सेकंड टेस्टमेंट को ही ले लें तो ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारियून थे, लूक था, मैथ्यू, जॉन, पॉल।
सो हार्ड क्योंकि जब ये मुझसे पूछते थे ना बाइबल, तो मैंने कहा बाइबल देखो हमारे रिलीजन में भी इंजील है, but your Bible is
not injil,
हाँ, you know it's man written,
it's man written है, it's written hundreds and of years after the
right, तो मैं उनको ये बोलता था।
अब आप मजे की बात देखें,
हमारे भी रिलीजन में ईसा अलैहिस्सलाम पे
इंजील
नाजिल हुई,
बिल्कुल वो तो हमारा अकीदा है, वो बिलीव
करते हैं, but that injil is not because there's no way,
there's no way
में लिखा हुआ है कि जीसस का son of God, you know अल्लाह वाला कुवत अल्लाह वाला अज़ीम।
अब आप इसमें मोटी सी बात देखें कि जो ओरिजिनल सेकंड टेस्टमेंट है, फर्स्ट सेकंड टेस्टमेंट विच वाज फाउंड इज इन ग्रीक, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम वाज अ ज्यू, ही वाज लिविंग इन जेरूसलम, तो उनकी लैंग्वेज वाज हिब्रू, इब्रानी लैंग्वेज जिसे कहा जाता है, जबकि जो ओरिजिनल फर्स्ट फॉर्म में बाइबल एग्जिस्ट की है वो ग्रीक लैंग्वेज में है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? उसे हम इंजील कैसे कह सकते हैं जो अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में ही नहीं है, मेरा ये मतलब है। खाली क्या बार खैर कि सम अदर टाइम उस पर बात करेंगे
इंशाल्लाह। सही बोल रहे हैं आप, आई गॉट योर पॉइंट, बिल्कुल सही जी, आई एग्री।
तो
कभी ऐसे सोचा नहीं था जैसे आपने बताया, लेकिन बोलते तो हम भी यही थे कि यू नो या दिस इज बाइबल इज नॉट यू नो वी बिलीव इन दैट बुक टू बट दैट्स नॉट द सेम बुक
एग्जैक्टली। तो मतलब मैं ये रिवायत, क्योंकि जब इसमें आ रही है और इसमें ये बात आ रही है, देखें रिवायत के अल्फाज क्या है, अब इस रिवायत में जो मैं सेकंड वाली कोट कर रहा था हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की, इसमें ये आ रहा है कि ज़बूर 12 रमज़ान में, 12 रमज़ान को नाजिल हुई, इंजील 18 रमज़ान को नाजिल हुई, मिसाल के तौर पर इसमें ये आ रहा है। डेफिनेटली आई एग्री, उस रिवायत के मुताबिक इंजील उसी डेट को नाजिल हुई होगी, बट वो इंजील तो आजकल नज़र नहीं आती हमें,
तो पता नहीं कि तो वो तो प्रिजर्व नहीं हुई है।
बिल्कुल वो तो है ही। ये ओरिजिनली इसकी हिस्ट्री को कभी स्टडी करें, मैंने आप शुरू में एक जिक्र किया था, रज़ा असलान एक स्कॉलर है बहुत बड़ा, हार्वर्ड ट्रिनिटी स्कूल से पढ़ा, उसकी आप इस पूरी ये थियोलॉजी के ऊपर स्टडी करें तो ही हैज़ एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। आई हैव लिसन टू हिम यूट्यूब पे, उसके पूरे 3-3 घंटे के Q&A सेशंस हैं, बाकायदा चर्च में जाके वो देता है जगह जगह, और वेरी एक्सेलेंट, उसको मुझे समझ आती है उसकी बात, और वो ये चीज़ें, खैर उसमें कभी इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे, इस आयत को कंक्लूड करते हैं। बहरहाल दूसरी जगह कुरान में क्योंकि आ रहा है इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, तो इस हदीस के मुताबिक जो हमने अभी ऊपर रिवायत नज़ल की, इसमें 24 रमज़ान डेट बताई गई, और एक दूसरी रिवायत हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के नज़दीक उसमें 24th की रात को शबे कदर होती है, उस रिवायत में ये भी आता है। वल्लाहु आलम, ये सब रिवायात जो है इनमें से बहुत सारी रिवायात को जब जमा करते हैं तो फिर फुका कराम, लेकिन एक किसी भी रिवायत की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है या इतनी ऑथेंटिसिटी तो खैर होगी, मैं रिवायत को ऐसे नहीं कह सकता, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ की लेवल की कोई रिवायत नहीं मिलती जिसमें पर्टिकुलर कैटेगोरिकली कोई डेट मिलती हो। तो वल्लाहु आलम लास्ट 10 डेज़ वाली रिवायत मिलती है, लास्ट 10 डेज़ में शबे कदर होगी। और फिर लास्ट फाइनली बस मन शाहिदा मिनकुम उश्शारफ अली उसम हु पे हमने बात की थी। शाहिदा कहते हैं, ये शहूद से निकला है, इट जस्ट मीन्स विटनेस, कि आपने एक चीज़ विटनेस कर ली, इससे ये लफ्ज़ शाहिदा निकला है। इस पे फिर क्योंकि मैंने जब शुरू में जिक्र किया था, फुकाह कराम ने कहा आप एक जगह पे ऐसी लैंड हुए जहाँ पे रमज़ान चल रहा है, तो यू इट मीन्स के यू हैव विटनेस्ड इट। और एक अशहर जो है ये महीने को क्योंकि कहा जाता है अरबी ज़बान में, इसलिए शाहिदा मिनकुम उश्शार इस महीने को विटनेस करना इसका मतलब हो गया। और ज़ाहिर है इसमें अगर कोई काफिर है या नाबालिग बच्चा है या कोई एबनॉर्मल मजनून टाइप या कोई ऐसा है, तो ऑब्वियसली ये ऑर्डर्स उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, एक आकिल बालिग मुसलमान के ऊपर ही ये सारे ऑर्डर्स नाजिल होते हैं। और फिर इसी तरह कोई और औरतों के मामलात में भी ज़ाहिर है, कोई हैज़ नफास वाली है या कोई मरीज़ है या मुसाफिर है, तो वो बाद में अपने उस सूरत में भी ज़ाहिर है, अगर ऑब्वियसली स्ट्रेंथ इतनी नहीं है या आजकल गर्मी और डिहाइड्रेशन और ये चल रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ी सी गुंजाइश मिलती है। बहरहाल खैर यानी ऑर्डर्स जो भी चलते हैं इसको हम आगे मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, आगे रमज़ान भी आने ही वाला है, तो अच्छा इसी हवाले से ये थोड़ी डिस्कशन हो जाती है। अनटिल देन وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك।